अध्ययन लेख 52। इस लेख का अध्ययन 24 फरवरी से 1 मार्च के दौरान किया जाएगा। विषय: माता पिताओं बच्चों को यहोवा से प्यार करना सिखाइए। ये लेख भजन 127 के 3 पर आधारित है, जहां लिखा है, बच्चे यहोवा से मिली विरासत हैं। गीत 134, बच्चे यहोवा की अमानत। लेख की एक झलक। क्या एक पति पत्नी को बच्चे करने चाहिए? अगर वो बच्चे करने की सोचते हैं तो उन्हें कितने बच्चे करने चाहिए? वो अपने बच्चों को यहोवा से प्यार करना और उसकी सेवा करना कैसे सिखा सकते हैं? इस लेख में हम आज के जमाने के कुछ उदाहरणों और बाइबल के सिद्धांतों पर ध्यान देंगे, जिससे हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। पैराग्राफ 1। सवाल: यहोवा ने माता पिता को कौन सी जिम्मेदारी दी है? जब यहोवा ने पहले जोड़े की सृष्टि की तो उसने उनमें बच्चे पैदा करने की इच्छा भी डाली। बाइबल बताती है, बच्चे यहोवा से मिली विरासत हैं। भजन 127 का 3। इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त आपको एक बड़ी रकम संभाल कर रखने के लिए देता है। जाहिर सी बात है, आपको खुशी होगी कि आपके दोस्त ने आप पर इतना भरोसा किया, पर साथ ही आपको चिंता होगी कि आप इतनी बड़ी रकम कैसे रख पाएंगे। हमारे सबसे करीबी दोस्त यहोवा ने हमें एक ऐसी अमानत संभाल कर रखने की जिम्मेदारी दी है जो किसी रकम से कहीं ज्यादा अनमोल है। वो अमानत है हमारे बच्चे। हमें उनकी देखभाल करनी है और उन्हें खुश रखना है। पैराग्राफ 2। सवाल: हम किन सवालों पर चर्चा करेंगे? ये फैसला किसे करना चाहिए कि पति पत्नी बच्चे करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कब करेंगे? बच्चों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? आइए बाइबल के कुछ सिद्धांतों पर ध्यान दें, जिनकी मदद से मसीही पति पत्नी इस मामले में सही फैसले कर पाएंगे। पति पत्नी के फैसले का आदर कीजिए। पैराग्राफ 3। सवाल क: पति पत्नी बच्चे करेंगे या नहीं, ये फैसला किसे करना चाहिए? सवाल ख: उनके परिवार वालों और दोस्तों को बाइबल का कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए? कुछ संस्कृतियों में लोग ये सोचते हैं कि पति पत्नी को शादी के तुरंत बाद बच्चे कर लेने चाहिए। इस मामले में उनके परिवार वाले और दोस्त भी कभी कभी दबाव डालते हैं। एशिया में रहने वाला भाई जेथ्रो कहता है, मंडली में जिन लोगों के बच्चे हैं वो उन नए जोड़ों पर बच्चे करने का दबाव डालते हैं जिन्होंने अब तक बच्चे नहीं किए हैं। एशिया में रहने वाला एक और भाई जेफरी ने कहा, जिन पति पत्नियों के बच्चे नहीं हैं उनसे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, हर जोड़े को खुद फैसला करना चाहिए कि वो बच्चे करेंगे या नहीं। ये फैसला करने का हक और जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। हालांकि परिवार वाले और दोस्त चाहते हैं कि नया जोड़ा खुश रहे, लेकिन सभी को याद रखना चाहिए कि बच्चे करने या न करने का फैसला उस जोड़े का है, न कि किसी और का। पैराग्राफ 4 और 5। सवाल क: पति पत्नियों को किन दो सवालों पर चर्चा करनी चाहिए? सवाल ख: इन विषयों पर कब चर्चा करना सही होगा? समझाइए। अगर एक पति पत्नी बच्चा करने की सोचते हैं तो अच्छा होगा कि वो आगे दिए दो जरूरी सवालों पर चर्चा करें। पहला, उन्हें कब बच्चे करने चाहिए? दूसरा, उन्हें कितने बच्चे चाहिए? एक पति पत्नी को इन सवालों पर कब चर्चा करनी चाहिए और ऐसा करना जरूरी क्यों है? ज्यादातर मामलों में इन विषयों पर शादी से पहले बात कर लेना अच्छा होता है। शादी से पहले क्यों? क्योंकि इस मामले में दोनों की सोच एक जैसी होनी चाहिए। इस दौरान उन्हें यह भी चर्चा करनी चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं या नहीं। कुछ पति पत्नियों ने फैसला किया है कि वो शादी के एक या दो साल बाद बच्चे करेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत समय देना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी होती है। उनका मानना है कि कुछ साल बाद बच्चे करने से पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उनका आपसे रिश्ता मजबूत होगा। पैराग्राफ 6। सवाल, संकटों से भरी इस दुनिया में जीने की वजह से कुछ पति पत्नियों ने क्या फैसला किया है? कुछ पति पत्नियों ने नूह के 3 बेटों और उनकी पत्नियों की मिसाल पर चलने का फैसला किया है। उन 3 जोड़ों ने फैसला किया था कि वो तुरंत बच्चे नहीं करेंगे। यीशु ने हमारे समय की तुलना नूह के दिनों से की थी। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो संकटों से भरा है और जिसका सामना करना मुश्किल है। मत्ती 24:37 और 2 तिमुथियुस 3:1। इस वजह से कुछ पति पत्नियों ने फैसला किया है कि वो कुछ समय तक बच्चे नहीं करेंगे, ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की सेवा में लगा सकें। पैराग्राफ 7। सवाल, लूका 14:28-29 और नीतिवचन 21:5 में दिए सिद्धांत से पति पत्नी को क्या मदद मिल सकती है? जब पति पत्नी ये तय करते हैं कि उन्हें बच्चे करने हैं या नहीं और कितने बच्चे करने हैं, तो वो लूका 14:28-29 में दिए सिद्धांत को ध्यान में रखकर खर्च का हिसाब लगाते हैं। वहां लिखा है, मिसाल के लिए, तुम में ऐसा कौन है जो एक मीनार बनाना चाहता हो और बैठकर पहले इसमें लगने वाले खर्च का हिसाब न लगाए, ताकि देखे कि उसे पूरा करने के लिए उसके पास काफी पैसा है या नहीं। नहीं तो ऐसा होगा कि वो उसकी नींव तो डालेगा मगर मीनार बनाने का काम पूरा नहीं कर पाएगा और सब देखने वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। अनुभवी माता पिता ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि बच्चों की परवरिश में काफी पैसा खर्च होता है। वो ये भी समझते हैं कि इसमें उन्हें काफी वक्त और ताकत लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा होगा कि पति पत्नी इन सवालों पर चर्चा करें। क्या परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हम दोनों को काम करना होगा? क्या हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हमारे परिवार की बुनियादी जरूरतें क्या हैं? अगर हम दोनों को काम करना होगा तो बच्चे को कौन संभालेगा? बच्चे की सोच और कामों पर किसका असर होना चाहिए? जो पति पत्नी ठंडे दिमाग से इन जरूरी सवालों पर चर्चा करते हैं, वो नीतिवचन 21:5 के मुताबिक काम करते हैं। वहां लिखा है, मेहनती की योजनाएं जरूर सफल होंगी, लेकिन जल्दबाजी करने वाले पर गरीबी छा जाएगी। पैराग्राफ 7 से संबंधित तस्वीर के बारे में, एक मसीही पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि वो बच्चे करेंगे या नहीं। वो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे होने से उन्हें कितनी खुशी मिलेगी और उन पर कौन सी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। पैराग्राफ 7 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, जब पति पत्नी ये तय करते हैं कि उन्हें बच्चे करने हैं या नहीं और कितने बच्चे करने हैं, तो वो खर्च का हिसाब लगाते हैं। पैराग्राफ 8। सवाल का, मसीही पति पत्नियों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? सवाल ख, एक प्यार करने वाला पति क्या करेगा? एक बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है कि माता पिता दोनों उसे समय दें और उसकी देखभाल करें। अगर पति पत्नी एक बच्चे के बाद तुरंत दूसरा बच्चा करते हैं, तो हर एक बच्चे को समय देना और उसकी देखभाल करना मुश्किल हो सकता है। कुछ पति पत्नी जिनके कई छोटे छोटे बच्चे थे, कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो हर बच्चे को कैसे संभालें। हो सकता है कि एक माँ बच्चों की देखभाल करते करते पूरी तरह पस्त हो जाए। ऐसे में क्या वो नियमित तौर पर निजी अध्ययन और प्रार्थना कर पाएगी और क्या वो लगातार प्रचार में जा पाएगी? यही नहीं, शायद उसके लिए सभाओं में ध्यान देना और उनसे फायदा पाना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक प्यार करने वाला पति सभाओं में और घर में अपनी पत्नी की मदद करने के लिए जितना हो सकता है वो करेगा। जैसे वो घर के कामों में अपनी पत्नी का हाथ मटाएगा। वो ये भी ध्यान रखेगा कि पारिवारिक उपासना से उसकी पत्नी और बच्चों को पूरा फायदा हो। साथ ही वो कोशिश करेगा कि नियमित तौर पर परिवार के साथ प्रचार कर सके। पैराग्राफ 8 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। एक प्यार करने वाला पति अपनी पत्नी की मदद करने के लिए जो हो सकता है वो करेगा। बच्चों को यहोवा से प्यार करना सिखाइए। पैराग्राफ 9 और 10। सवाल, बच्चों की मदद करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनका बच्चा यहोवा से प्यार करना सीखे? वो कैसे अपने बच्चे को इस दुनिया के बुरे असर से बचा सकते हैं? आइए कुछ तरीकों पर गौर करें जो माता पिता अपना सकते हैं। मदद के लिए यहोवा से प्रार्थना कीजिए। मानो और उसकी पत्नी के उदाहरण पर ध्यान दीजिए, जो शिमशोन के माता पिता थे। जब मानो को पता चला कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है, तो उसने यहोवा से प्रार्थना की और बच्चे की परवरिश करने के लिए उससे मदद मांगी। पैराग्राफ 11। सवाल, जैसे न्यायियों 13:8 में बताया गया है, माता पिता कैसे मानवों की तरह बन सकते हैं? बोस्निया और हर्जेगोविना के रहने वाले निहाद और अल्मा ने मानव से काफी कुछ सीखा। वो कहते हैं, हमने मानव की तरह यहोवा से प्रार्थना की। हमने उससे कहा कि हम एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं और इस काम में वो हमारी मदद करे और हमें सिखाए कि हमें क्या करना है। यहोवा ने कई तरीकों से, जैसे अपने वचन बाइबल, उस पर आधारित प्रकाशनों, सभाओं और अधिवेशनों के जरिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। न्यायियों 13:8 में लिखा है, मानव ने यहोवा से विनती की, हे यहोवा, तूने जिस सेवक को अभी भेजा था, मेहरबानी करके सच्चे परमेश्वर के उस सेवक को दोबारा भेज कि वो हमें बताए कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करें। पैराग्राफ 12। सवाल, यूसुफ और मरियम ने अपने बच्चों के लिए कैसी मिसाल रखी? अपनी मिसाल से सिखाइए। आपके बच्चे आपकी बातों से ज्यादा आपके कामों से सीखते हैं। यूसुफ और मरियम ने यीशु और अपने सभी बच्चों के लिए एक बढ़िया मिसाल रखी। यूसुफ अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। इसके अलावा परमेश्वर की उपासना करते रहने के लिए उसने पूरे परिवार का हौसला बढ़ाया। हालांकि मूसा के कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं था कि यूसुफ अपने पूरे परिवार को हर साल फसह का त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम ले जाए, फिर भी उसने ऐसा किया। उसके जमाने के कुछ पिताओं ने शायद सोचा होगा कि पूरे परिवार को ले जाने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा और खर्चा भी बहुत होगा। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने कामों से जाहिर किया कि परमेश्वर की उपासना उसके लिए बहुत मायने रखती है। उसने अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाया। मरियम को भी परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान था। उसने न सिर्फ अपनी बातों से बल्कि कामों से अपने बच्चों को यहोवा के वचन से प्यार करना सिखाया। पैराग्राफ 13। सवाल, एक पति पत्नी ने यूसुफ और मरियम की मिसाल से क्या सीखा? निहान और अल्मा, जिनका जिक्र पहले किया गया था, यूसुफ और मरियम की तरह बनना चाहते थे। उन्हें कैसे मदद मिली कि वो अपने बेटे को यहोवा से प्यार करना और उसकी सेवा करना सिखा सकें? वो कहते हैं, हमने अपने जीने के तरीके से अपने बेटे को ये सिखाने की कोशिश की कि यहोवा के सिद्धांतों के मुताबिक जीना ही सबसे अच्छा है। निहाद ने यह भी कहा, आप अपने बच्चे को जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वैसा खुद बनिए। पैराग्राफ 14। सवाल, माता पिता को क्यों पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे दोस्ती करते हैं? सही दोस्त चुनने में अपने बच्चों की मदद कीजिए। माता पिता दोनों को मालूम होना चाहिए उनके बच्चे किससे दोस्ती करते हैं और वो क्या करते हैं। माता पिता को ये भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे इंटरनेट के जरिए और फोन पर किससे बात करते हैं। हमारे बच्चे जिस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं, उसका उनकी सोच और कामों पर बहुत गहरा असर होता है। पैराग्राफ 15। सवाल, जेस्सी के उदाहरण से माता पिता क्या सीख सकते हैं? अगर माता पिता कंप्यूटर या मोबाइल फोन चलाना नहीं जानते तो वो क्या कर सकते हैं? फिलीपींस में रहने वाला एक पिता जेस्सी कहता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, फिर भी हम अपने बच्चों को उन खतरों के बारे में बताने से पीछे नहीं हटे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गलत इस्तेमाल से हो सकते हैं। भले ही जेस्सी को इन उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन इस वजह से उसने अपने बच्चों को इन्हें इस्तेमाल करने से नहीं रोका। वो कहता है, मैंने बच्चों को बढ़ावा दिया कि वो इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, जैसे कोई नई भाषा सीखने, सभाओं की तैयारी करने और बाइबल पढ़ने के लिए। हमारी वेबसाइट jw.org पर नौजवान भाग में मैसेज करने और इंटरनेट पर फोटो डालने के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आपने उनके साथ ये जानकारी पढ़ी है और इस पर चर्चा की है? क्या आपने उनके साथ बॉस कौन है, आप या आपका फोन और सोशल मीडिया जरा संभल कर वीडियो देखे हैं और उन पर चर्चा की है? बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सिखाते वक्त ये जानकारी बहुत फायदेमंद होगी। पैराग्राफ 16। सवाल, कई माता पिताओं ने क्या किया और इसके क्या नतीजे हुए हैं? कई माता पिता कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो यहोवा की सेवा करने में अच्छी मिसाल हैं। कोटे डी आइवरी में रहने वाले एक माता पिता नडाने और बोमिन पर ध्यान दीजिए। वो अक्सर सर्किट निगरान को अपने घर बुलाते थे। नडाने बताता है, इसका हमारे बेटे पर बहुत अच्छा असर हुआ। उसने पायनियर सेवा शुरू की और अब वो उन मंडलियों का दौरा करने जाता है जहां कभी कभी सर्किट निगरान नहीं जा पाते। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की संगति का इंतजाम कर सकते हैं? पैराग्राफ 17 और 18। सवाल, माता पिताओं को कब से अपने बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए? छुटपन से ही बच्चों को सिखाइए। आप अपने बच्चे को जितनी कम उम्र से सिखाना शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। तिमोथियस के बारे में सोचिए, जो बड़े होने के बाद प्रेषित पौलुस के साथ मंडलियों का दौरा करने गया। वो कैसे इस काबिल बन सका? तिमोथियस की माँ यूनीके और उसकी नानी लोइस ने उसे तब से सिखाना शुरू किया था जब वो एक शिशु था। दूसरा तिमोथियस 3:15। कोटे डी आइवरी में रहने वाले शॉन क्लॉड और पीस नाम के एक पति पत्नी ने इस मामले में अच्छी मिसाल रखी। उन्होंने यहोवा से प्यार करने और उसकी सेवा करने में अपने 6 बच्चों की मदद की। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाए? उन्हें यूनीके और लोइस की मिसाल से काफी मदद मिली। वो बताते हैं, हमने अपने बच्चों को छुटपन से ही परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था, यानी उनके पैदा होने के तुरंत बाद। पैराग्राफ 19। सवाल, बच्चों के मन में परमेश्वर का वचन बिठाने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बच्चों के मन में बिठाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई बात सिखाना और बार बार उसे दोहराकर बच्चों के मन पर मानो छाप देना। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि माता पिता नियमित तौर पर समय निकालकर अपने बच्चों को सिखाएं। हो सकता है कभी कभी माँ बाप बच्चों को एक ही बात बताते बताते परेशान हो जाएं। फिर भी अगर वो कोशिश करते रहें तो वो परमेश्वर का वचन समझने और उसके मुताबिक चलने में अपने बच्चों की मदद कर रहे होंगे। पैराग्राफ 20। सवाल, बताइए कि भजन 127 के 4 में दिया सिद्धांत बच्चों की परवरिश में कैसे लागू किया जा सकता है? समझ बूझ से काम लीजिए। भजन 127 के 4 में बच्चों की तुलना तीर से की गई है। वहां लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं वैसे जवान आदमी के बेटे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर तीर एक जैसा हो, क्योंकि तीर अलग अलग आकार और धातु के बने हो सकते हैं। उसी तरह हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। इस वजह से माता पिता को सोचना चाहिए कि वो अपने हर बच्चे को कैसे सिखाएंगे। इसराइल में एक माता पिता ने अपने दो बच्चों की अच्छी परवरिश की और आगे चलकर वो यहोवा के सेवक बने। ये माता पिता बताते हैं कि किस बात ने उनकी मदद की। हमने हर बच्चे के साथ अलग से बाइबल अध्ययन किया। शायद ऐसा करना हर परिवार के लिए मुमकिन ना हो या फिर जरूरी भी ना हो, इसलिए हर परिवार के मुखिया को इस मामले में खुद तय करना होगा कि वो क्या करेगा। पैराग्राफ 20 से संबंधित तस्वीर के बारे में, एक पति पत्नी अपने हर बच्चे को अलग से अध्ययन करा रहे हैं क्योंकि बच्चों की उम्र और काबिलियतें अलग अलग हैं। पैराग्राफ 20 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, माता पिता को सोचना चाहिए कि वो अपने हर बच्चे को कैसे सिखाएंगे। यहोवा आपकी मदद करेगा। पैराग्राफ 21 सवाल, माता पिता यहोवा से किस तरह की मदद की उम्मीद कर सकते हैं? माता पिताओं को लग सकता है कि बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, बच्चे यहोवा की तरफ से तोहफे हैं। यहोवा हमेशा माता पिताओं की मदद करने के लिए तैयार रहता है। जब वो मदद के लिए उससे प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी सुनता है। वो ऐसा कई तरीकों से करता है, जैसे बाइबल और प्रकाशनों के जरिए। इसके अलावा मंडली के अनुभवी माता पिताओं की अच्छी मिसाल और सलाह भी एक तरह से उनकी प्रार्थनाओं का जवाब है। पैराग्राफ 22 सवाल, माँ बाप अपने बच्चों को सबसे अच्छी चीज क्या दे सकते हैं? कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश करने में करीब 20 साल लग जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि माता पिता बच्चों को सिखाना कभी नहीं छोड़ते। इन सालों के दौरान माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी चीज दे सकते हैं वो है उनका प्यार, समय और बाइबल की शिक्षा। जरूरी नहीं कि उनकी शिक्षा का हर बच्चे पर एक जैसा असर हो। फिर भी जो बच्चे ऐसे परिवार में पलते हैं जहां माँ बाप यहोवा से प्यार करते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चों पर इसका अच्छा असर होता है। एशिया में रहने वाली एक बहन जोएना मे का कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। वो कहती है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो शिक्षा दी उसके लिए मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूं। उन्होंने मुझे समझाया, सुधारा और यहोवा से प्यार करना सिखाया। उन्होंने न सिर्फ मुझे जन्म दिया बल्कि ये भी सिखाया कि मैं कैसे अच्छी जिंदगी जी सकती हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस बहन ने जो कहा उससे दुनिया भर में रहने वाले लाखों मसीही सहमत होंगे। आप क्या जवाब देंगे? मसीही पति पत्नियों को दूसरों के दबाव में आकर बच्चे क्यों नहीं करने चाहिए? जब पति पत्नी बच्चे करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें किन बातों पर गौर करना चाहिए? माता पिता अपने बच्चों को यहोवा से प्यार करना कैसे सिखा सकते हैं? गीत 59 मेरे संग याह की तारीफ करो। लेख समाप्त।